नमस्कार भारत, 7 मई दिन सोमवार, सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। ब्रिटेन कर रहा है कोशिश ईरान के साथ परमाणु समझौते को ना तोड़े अमेरिका।
हर तरफ से कहा जा रहा है अमेरिका को, इस डील को मत छोड़िए आप, ईरान के पास रिसोर्सेस है, ईरान के पास नॉलेज है।
पाकिस्तान के गृह मंत्री को जान से मारने का प्रयास, हमलावर हिरासत में।
एक शख्स ने उनके ऊपर फायरिंग की और फायरिंग के बाद गोली उनके दाएं कंधे में लगी, जिसके बाद एहसन इकबाल जख्मी हो गए और उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ले जाया गया।
काले हिरण के शिकार मामले में जमानत पर चल रहे सलमान खान की जोधपुर अदालत में होगी पेशी।
जमानत प्रार्थना पत्र इनका स्वीकार किया गया था, उसके साथ ही दो कंडीशन लगाई गई थी, 7 मई 2018 को पुनः इसी न्यायालय में उपस्थित रहना।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत सर किम डैरोक ने कहा है कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं जिससे ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता को कम किया जा सके। ट्रंप इस समझौते की आलोचना कर चुके हैं और संभव है कि वो इस सप्ताह के अंत तक इस समझौते को खत्म भी कर दें। सर किम ने कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी कई हफ्तों से इस बाबत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान की क्षेत्रीय गतिविधियों, उसके मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु प्रतिबंधों पर समय सीमाओं को लेकर खासा चिंता में है। उन्होंने कहा कि तीनों ही मुल्क इस समझौते को बनाए रखने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं, ऐसे में क्या अमेरिका को इसे खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री एहसान इकबाल पर जानलेवा हमला हुआ है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि एक बंदूकधारी ने इकबाल पर उस समय गोली चलाई जब वह पंजाब प्रांत के नरोवाल कस्बे में पार्टी की एक मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। पुलिस ने बताया कि इकबाल के दाएं हाथ में गोली लगी है। हमले के बाद इकबाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें खतरे से बाहर बताया गया है। गोली चलाने वाले संदिग्ध को भी पकड़ लिया गया है। इकबाल पर इस हमले की सभी राजनीतिक पार्टियों ने आलोचना की है, हालांकि हमले के मकसद के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पंजाब प्रांत के असेंबली मेंबर जईम कादरी ने कहा,
एक अंतनाक वाक्या पेश आया नारोवाल में, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, जिसमें वजीर दाखला जनाब एहसन इकबाल साहब मजरूब हुए और वो मजरूब करने वाला शख्स जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है।
ये थे जईम कादरी के शब्द। पोलैंड में आए भूकंप के बाद पोलैंड की सबसे बड़ी कोयला खदान में काम कर रहे मजदूरों में अब तक 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हालांकि बचाव कर्मी अब भी लापता मजदूरों की तलाश में लगे हुए हैं जो जमीन से करीब 1 किलोमीटर गहराई में फंसे हो सकते हैं। खदान से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अब भी 200 मीटर के मलबे को साफ करना बाकी है जहां इन मजदूरों के फंसे होने की उम्मीद है। काफी तादाद में लोग खदान के बाहर मौजूद हैं और फंसे हुए मजदूरों की सलामती के लिए मोमबत्तियां जलाकर दुआएं मांग रहे हैं। वहां मौजूद एक शख्स का कहना है, कर रहे हैं कि बचाव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए और जो भी खदान में अंदर फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाए। हम बचाव कार्य में शामिल लोगों के लिए भी फिक्रमंद हैं। खदान में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे एक शख्स ने हमसे बात की। बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका का ऐसा कहना कि प्योंगयांग में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते अपने परमाणु कार्यक्रमों पर बात करने को तैयार हो गया है, गलत है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका लोगों की रायों को गुमराह कर रहा है और प्योंगयांग के फैसले को भी किसी भी सूरत में उसकी कमजोरी को नहीं समझा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप पर सैन्य बल की तैनाती की भी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय की ओर से अमेरिका के इस कदम को जानबूझकर उकसाने वाला बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के प्रस्तावित शिखर सम्मेलन से पूर्व दोनों देशों के बीच संबंध थोड़े नरम तो जरूर हुए हैं। कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के आरोप में ईरान में 16 महिलाओं को जेल भेज दिया गया है। एक न्यायिक अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपी महिलाएं कथित चरमपंथी संगठन को समर्थन देने के लिए सीरिया भी गई थी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत संदीप सोनी के साथ। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ईरान को लगता है कि परमाणु समझौते के प्रति अमेरिका का रवैया बदल गया है। राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो ईरान के साथ 3 साल पुराने परमाणु समझौते को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस पर ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने यदि ऐसा वाकई किया तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन ने अब कहा है कि वो फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका इस समझौते को ना तोड़े। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए भूमिका राय से।
अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत सर किम डैरोक ने कहा है कि उन प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है जिनसे ईरान के साथ परमाणु समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चिंताओं को कम किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के मुखर आलोचक रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ इस समझौते को रद्द करने की घोषणा कर सकते हैं। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत सर किम डैरोक ने कहा है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी उन उपायों की तलाश कर रहे हैं जिनसे अमेरिका को इस समझौते को रद्द करने से रोका जा सके। इस मुद्दे पर हमारे कुछ विचार हैं। हमें लगता है कि हम कोई भाषा तलाश सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की चिंताओं को दूर किया जा सके। हम फ्रांस और जर्मनी में अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब तक ईरान इस समझौते का पालन कर रहा है, हमारी कोशिश रहेगी कि समझौता कायम रहे। अमेरिका में ब्रिटेन के एक पूर्व राजदूत पीटर वेस्ट मेकॉट का कहना है कि अमेरिका ने यदि इस समझौते को तोड़ा तो ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू कर सकता है।
It's possible that the hardliners in particular, the Revolutionary Guard and so on, who never really liked the idea.
ये संभव है कि कट्टरपंथी, खासतौर पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड और उनकी तरह के अन्य लोग जो पश्चिमी देशों के साथ कभी इस तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे, वो आयातुल्ला और अन्य को राजी कर सकते हैं कि परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू करना ईरान के हित में होगा। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी कह चुके हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौता अगर खत्म किया तो अमेरिका को पछताना होगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी कह रहे थे कि अमेरिका ने जो रास्ता चुना है, अगर उसने परमाणु समझौते से हटने का फैसला किया तो उन्हें ऐतिहासिक रूप से पछताना होगा। परमाणु समझौते पर अमेरिका और ईरान की ओर से आ रहे बयानों के क्या मायने हैं, इस सवाल पर वॉशिंगटन में इस मामले के जानकार डॉक्टर एहसान एहरारी कहते हैं,
हर तरफ से कहा जा रहा है अमेरिका को इस डील को मत जोड़िए आप, ईरान के पास रिसोर्सेस है, ईरान के पास नॉलेज है, तो ट्रंप भी न सिर्फ धमकी देंगे, मिलिट्री एक्शन लेगी, बट मैं समझता हूँ कि ट्रंप के दौर में अमेरिका जो है कोशिश कर रहा है मिलिट्री एक्शन लिया जाए ईरान के खिलाफ, जैसे जॉर्ज बुश ने किया था सद्दाम के तालुक से।
ईरान के साथ परमाणु समझौते पर दस्तखत करने वाले देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी देश चाहते हैं कि ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौता बना रहे। ये समझौता 3 वर्ष पहले हुआ था। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था, जिसके बदले में अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी थी। ये समझौता राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही इस पर खतरा मंडरा रहा है।
ब्रिटेन की कोशिश, ईरान के साथ परमाणु समझौता न तोड़े अमेरिका, रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। पाकिस्तान के गृह मंत्री एहसान इकबाल को कल एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। हमले के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता सारा हसन इस खबर पर और जानकारी दे रही हैं।
जैसे कि आपने जिक्र किया कि नामालूम शख्स की फायरिंग से वज़ीर दाखला एहसन इकबाल जख्मी हुए हैं, तो मैं ताज़ा तरीन इत्तला आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अब तक की ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि नामालूम शख्स नहीं था बल्कि उसका पता लगा लिया गया है। उसका नाम आबिद है और वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जिसने वज़ीर दाखला एहसन इकबाल पर फायरिंग की। एहसन इकबाल अपने आबाई हल्के नारोवाल के इलाके कंजरूर में एक कॉर्नर मीटिंग में शरीक थे कि मीटिंग अभी जारी ही थी कि एक शख्स ने उनके ऊपर फायरिंग की और फायरिंग के बाद गोली उनके दाएं कंधे में लगी, जिसके बाद एहसन इकबाल زخمی ہو گئے اور انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لے جایا گیا. ان کے بیٹے احمد اقبال نے تصدیق کی ہے کہ وہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. اس کے ساتھ ساتھ مقامی ایس ایچ او نے بھی بی بی سی کو بتایا تھا کہ فائرنگ کرنے والا شخص میٹنگ میں ہی موجود تھا اور اس کے بعد اسے حراست میں لیا گیا. مسلم لیگ نواز کے کارکنوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی تو انہوں نے فوراً ہی اس واقعے کے بعد مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا تھا. وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور اس کی عمر 20 سے 22 سال ہے. بی بی سی نے پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد سے بات کی تو انہوں نے صرف کہا کہ ابھی تحقیقات جاری ہیں, لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حملہور کو گرفتار کر لیا گیا ہے, وہ پولیس کی حراست میں ہے اور اسے مزید تفتیش جاری ہے. کیونکہ احسن اقبال بڑے ہی زیادہ ووکل رہے ہیں تو انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ مذہب کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, کسی نے فرنچائز نہیں کھولی ہے, تو ان کو کئی حلقے اس حوالے سے تنقید کا نشانہ ماضی میں بھی بناتے رہے ہیں. ٹویٹر پہ بھی ان کے خلاف بہت ٹرولز ہوئے ہیں, بڑی کیمپین چلی ہیں. تو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قتل کے پیچھے کیا محرکات ہے, لیکن ماضی میں وہ کافی زیادہ بولتے رہے ہیں مذہبی تنظیموں کے خلاف جو کہ سمجھتی ہیں کہ مذہب صرف ان کی اجارہ داری ہی ہے.
پاکستان کے گرہ منتری کو جان سے مارنے کی کوشش, حملہور حراست میں. جانکاری دے رہی تھیں اسلام آباد سے بی بی سی سنواد داتا سارہ حسن. آپ سن رہے ہیں بی بی سی ہندی سے دن کی پہلی سبھا نمسکار بھارت. آپ ہمیں ریڈیو کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی .com پر اور اپنے موبائل پر فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں اس سمے لائیو. کالے ہرن کے شکار معاملے میں پچھلے مہینے 5 سال کی سزا سنائے جانے کے بعد اور پھر ضمانت پر رہا ہونے کے بعد سلمان خان کی آج جودھ پور کی عدالت میں پیشی ہے. سنیے جے پور سے نارائن باریٹ کی رپورٹ.
کالے ہرنوں کے شکار کے جرم میں سزا کے بعد سلمان خان آج پہلی مرتبہ عدالت میں حاضر ہوں گے. پچھلے ماہ جودھ پور کی ایک عدالت نے سلمان خان کو کالے ہرنوں کے شکار کا دوشی مانا اور 5 سال کی سزا سنائی تھی. یہ کوئی 20 سال پرانا معاملہ ہے. ان کے ساتھ سیف علی خان, تبو, سونالی بیندرے اور نیلم پر بھی مقدمہ چلا تھا, لیکن استغاثہ ان فلم ستاروں کے خلاف آروپ ثابت نہیں کر پایا. شکار کی یہ گھٹنا اس وقت کی ہے جب یہ بالی ووڈ اداکار ہندی فلم ہم ساتھ ساتھ ہے کی شوٹنگ کے سلسلے میں جودھ پور میں جمع تھے. سزا کے بعد سلمان خان کو 2 دن جودھ پور کی جیل میں گزارنے پڑے تھے. اس کے بعد ان کی اپیل پر ضمانت مل گئی تھی, لیکن عدالت نے ضمانت میں کچھ شرطیں بھی لگائی ہے. وشنوئی سماج شکار کی گھٹناؤں کا ورودھ کرتا رہا ہے. اس مقدمے میں وشنوئی سماج کے وکیل مہیپال وشنوئی نے آج ہونے والی کارروائی کے بارے میں بتایا.
جی, آج سلمان خان کو جو پورو میں جب جمن پرارتھنا پتر ان کا سویکار کیا گیا تھا, اس کے ساتھ ہی 2 کنڈیشن لگائی گئی تھی. ایک تو بھارت چھوڑ کے بغیر انومتی کے دیش چھوڑ کے نہیں جائے گا, تو ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ 7 مئی 2018 کو پناہ اسی نیالے میں اپستھت رہنا ہے. اسی کے تحت آج سلمان خان نیالے میں اور تھا, انہیں جو جمن دی گئی تھی پورو, اس کے تحت آج اس کی اپستھتی درج کروائی جائے گی, جو آن ریکارڈ لیا جائے گا.
سلمان خان نے سزا کے خلاف اپیل کی ہے اور اپنی بے گناہی کی دلیل دی ہے, لیکن ابھیجن پکش نے سزا کو اچت بتایا ہے. اس سے پہلے شکار کے 2 معاملوں میں سلمان خان بری ہو چکے ہیں. نارائن باریٹ, بی بی سی, جے پور.
کرناٹک میں ہونے والے ودھان سبھا چناؤ سے پہلے بھارتی جنتا پارٹی نے ایک اور وعدہ کیا ہے. اس بار پارٹی ادھیکش امت شاہ نے کہا ہے کہ پارٹی اگر ستا میں آئی تو مہادائی ندی کے پانی کے بٹوارے کا جو وواد ہے اس وواد کو 6 مہینے کے بھیتر سلجھا دیا جائے گا. بنگلورو سے عمران قریشی کی رپورٹ.
مہادائی ندی کرناٹکا سے شروع ہوتی ہے اور گوا ہوتے ہوئے مہاراشٹر کو چھو کر پھر سے عرب ساگر میں جاتی ہے. کرناٹکا نے کلسا بندوری پریوجنا کا سوچا, جسے لگ بھگ 8 TMC فیٹ پانی بیلگاوی ہوبلی جیسے شہروں کو پینے کا پانی دے سکیں, کیونکہ اس سے بھی زیادہ پانی واپس عرب ساگر میں چلے جاتا ہے. گوا نے اس پریوجنا کا ویروت کیا اور اس کے صلاح پر مہادائی ندی بٹوارا ٹرائبنل ستاپت ہوا. ٹرائبنل کوئی نرنے پر نہیں آئے اور کہا مکھیہ منتریوں بات چیت سے اس وشے کو سلجھائیں, لیکن اس بارے میں گوا تیار نہیں تھا اور کیندر سرکار بھی کچھ نہیں کیا تھا. بہرحال امیت شاہ نے بیلگاوی ضلع کے سوندتی میں ایک جن سبھا سمبودھت کرتے ہوئے کہا, پردھان منتری مودی نے اسی معاملے پر گدک کی چناوی ریلی میں کانگریس کے پورو ادھیکش سونیا گاندھی پر الزام لگایا کہ انہوں نے 2007 میں گوا میں کہا تھا کہ مہادائی کا پانی صرف گوا کا ہے.
یہ سمسیا کانگریس نے آپ کو وراثت میں دی ہے, لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمسیا آنے والی پیڑھی کو بھی سونپنے کی نوبت آئے, وہ ہم نہیں چاہتے ہیں.
कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कल पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय सोनिया गांधी पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि वो सिर्फ पार्टी अध्यक्ष थी।
ನಮ್ಮ ಐದು ವರ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ।
अगर प्रधानमंत्री जान बूझ कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो कर्नाटका के लोग इस तरह के बयान को नहीं मानेंगे। हमने प्रतिनिधि मंडल लेकर गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री इतना तो कह सकते थे कि आप गोवा की कांग्रेस पक्ष से भी बात कीजिए। इंदिरा गांधी ने तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट से चेन्नई के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया था, हालांकि कृष्णा नदी का पानी का मामला सिर्फ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच था। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। ये बयानबाजी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी अभियान शुरू होने से पहले कर्नाटका बीजेपी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येडियुरप्पा ने एक बड़ी जनसभा में ऐलान कर दिया कि गोवा बातचीत के लिए तैयार है। उसके फौरन बाद गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने येडियुरप्पा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे बीजेपी की परिस्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी। बहरहाल इस तरह के बयानबाजी आने वाले तीन दिनों में और बढ़ेगी ही। इसका असर मतदाताओं पर क्या होगा, 15 मई को पता चलेगा जब कर्नाटका चुनाव के नतीजे आएंगे। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और आइए अब एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। भूमिका राय मेरे सामने बैठी हैं, ठीक कई अखबार उनके हाथ में हैं। कहाँ से शुरुआत कर रही हैं, क्या अखबारों के पहले पन्ने पर आंधी नज़र आ रही है आपको?
जी संदीप, मैं प्रेस रिव्यू जब शुरू कर रही हूँ दिल्ली से छपे अखबारों की, तो सबसे पहले आपको मौसम की जानकारी दे दूँ। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि जैसा आंधी तूफान 2 मई को आया था, वैसा ही 7, 8, और 9 संभावित तारीखें हैं जो मौसम विभाग ने दी हैं कि इन तारीखों में भी आंधी तूफान आ सकता है। और ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर पश्चिम राज्यों में आंधी तूफान की खबर जो है वो जनसत्ता अखबार ने प्रमुखता से छापी है इसे। और अखबार लिखता है कि 2 मई को आंधी आई, तेज़ आंधी जैसा खतरा उत्तर पश्चिम भारत पर फिर से मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 7 से 9 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत में तेज आंधी, ओले और बारिश हो सकती है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में चेतावनी जारी की है। और हरियाणा में क्या कहते हैं, स्कूल भी बंद किया गया है इसी के मद्देनज़र कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हो। तो सबसे पहले मौसम की जानकारी के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाने वाला है, लेकिन उससे पहले कठुआ रेप मामला जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि इस मामले का जो ट्रायल है वो राज्य में ही हो या बाहर हो, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो मांग कर रहा है कि इस मामले की सुनवाई बाहर हो। तो खैर, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के हवाले से खबर छापी है, जिसमें महबूबा मुफ्ती का एक बयान है कि सीबीआई की ज़रूरत नहीं, अगर पुलिस पर भरोसा नहीं तो फिर किस पर, क्योंकि बार बार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो लेकिन महबूबा मुफ्ती और जो सरकार है वो हमेशा से सीबीआई जांच का विरोध करती आई, और वो हमेशा से कहती आई है कि जो क्राइम ब्रांच ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी उसके उस पर भरोसा करना चाहिए, और अगर आप पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप किस पर भरोसा करेंगे। तो मुफ्ती ने अपने बयान में आगे कहा है कि कठुआ में 8 साल की बच्ची के रेप और हत्या मामले में अगर आप राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर आप किसी को भी विश्वास योग्य मत समझिए। तो एक बड़ा बयान है महबूबा की तरफ से, और लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की और सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी ये सारी चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा।
और इन खबरों के अलावा और क्या छपा है ये बताइए।
और एक बुरी खबर है जो अफगानिस्तान से आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने ही छापी है। अखबार लिखता है कि अफगानिस्तान में अपहृत 7 भारतीयों का अपहरण हो गया है, और अफगानिस्तान के बगलाल प्रांत में अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने भारतीय कंपनी KEC इंटरनेशनल के 7 कर्मचारियों को अगवा किया है। हालांकि किस संगठन ने किया है अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन ये एक बहुत ही दुखद खबर है जो आई है। और इसके अलावा एक और भी चौंकाने वाली तो नहीं कहूँगी, क्योंकि बीते कई महीनों से रेप की खबरें इतनी चलन में इतनी हर रोज आ रही हैं इसलिए ज्यादा शॉकिंग नहीं लगेगा। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार छापता है कि पिछले 2018 जो साल शुरू हुआ है उसके बीते 100 दिनों में 5 औरतें हर दिन उनका रेप हुआ है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा हिंदुस्तान टाइम्स अखबार छापता है और ये पुलिस के हवाले से है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है कि नीट के एग्ज़ाम एक तस्वीर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में, जिसमें एक बच्ची अपने कान के इयररिंग्स निकाल रही है और एक आदमी एक बच्चे के कान में टॉर्च डाल करके कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। तो
हो सकता है कि वो मुन्ना भाई को तलाशने की कोशिश कर रहे हो।
बहुत मुन्ना भाई एमबीबीएस से प्रेरित।
बहुत शुक्रिया भूमिका राय समाचार पत्रों की विस्तार से समीक्षा करने के लिए। श्रोताओं, पाकिस्तान में पिछले दिनों प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के एक बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी, इतनी सुर्खियां कि वस्तुल्ला खान को लगा कि आज इस पर चर्चा करनी चाहिए। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
लोकतंत्र का तंबू दो बल्लियों पे खड़ा होता है, पक्ष और निष्पक्ष, मगर इन दिनों कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि किस शाख पे कौन बैठा हुआ है। पाकिस्तान में मरकजी सरकार मुस्लिम लीग नून की है, मगर विरोधी गुट भी मुस्लिम लीग नून ही लगती है। प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी हर जगह कह रहे हैं कि मैं भले देश का प्रधानमंत्री हूँ, मगर मेरे प्रधानमंत्री तो नवाज शरीफ हैं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री अब्बासी ने कहा कि अगले चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि खलाई मखलूक यानी एलियंस करवाएंगे। ये बात विरोधी गुट का कोई नेता कहता तो बात समझ में भी आ जाती कि अपोजिशन का तो काम ही हर चीज़ में कीड़े निकालना है, मगर किसी प्रधानमंत्री का ये कहना कि अगला चुनाव एलियन करवाएंगे सरकार की बेचारगी जाहिर करता है। प्रधानमंत्री का इशारा जाहिर है कुछ गुप्तचर संस्थाओं की ओर है, पर विडंबना यह है कि इन गुप्तचर संस्थाओं का बॉस भी प्रधानमंत्री ही है, भले कागज़ पे ही सही, पर शायद ये इतनी ताकतवर हैं कि खुद बॉस यानी प्रधानमंत्री भी किसी सती सावित्री की तरह इन संस्थाओं का नाम लेने की बजाय घूंघट काढ़ के बस यही कह सकता है, मुन्ने के अब्बा अजी सुनते हो। इसी तरह भ्रष्टाचार का पता चलाने के लिए सीबीआई की तरह का इदारा नैब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे निकाले जाने वाले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार की जायदादों की छान भटक कर रहा है। इस पे भी प्रधानमंत्री अब्बासी ने आरोप लगाया है कि नैब किसी और के इशारों पे काम कर रहा है। जाहिर है कि ये इशारा भी मुन्ने के अब्बा की तरफ है। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार रवैया प्रधानमंत्री अब्बासी की पार्टी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का है। वो हर जगह कहते फिर रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो हम कराची को न्यूयॉर्क बना देंगे, पूरे मुल्क में मॉडर्न हाईवेज का जाल बिछा देंगे, सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी पंजाब के बराबर तरक्की देंगे, इत्यादि इत्यादि। किसी में हौसला नहीं कि श्री शहबाज शरीफ को झंझोड़ के बता सके कि भाई साहब ज़रा उकड़ू बैठिए, मैं आपके सर पे ज़रा ठंडे पानी की बाल्टी तो डाल दूं ताकि आप होश में आ जाएं। आप अपोजिशन में नहीं हैं सरकार, आप तो खुद सरकार हैं। कुछ यही रवैया सिंध में पिछले 9 वर्ष से सरकार चलाने वाली पीपल्स पार्टी का भी है। महामंत्री हर जलसे में कह रहे हैं कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो सिंध को इतनी प्रगति देंगे कि सिंध ने सोचा भी ना होगा। लगता है गर्मी ने सबका दिमाग उलट दिया है। महामंत्री की ऐसी बातों के बाद अब सिंधी जनता ये सोच रही है कि महा के साथ और क्या क्या शब्द जोड़ा जा सकता है।
ये थे पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान, हमेशा की तरह अपने अलग अंदाज में। और अब साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आईपीएल में कल भी 2 मुकाबले खेले गए, जहां मुंबई इंडियंस ने अपने ही घर में खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 13 रन से हराया। मुंबई इंडियंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर सूर्य कुमार यादव के 59 और इवन लेविस के 43 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 181 रन बनाए। जवाब में कोलकाता रोबिन उथप्पा के 54 और कप्तान दिनेश कार्तिक के नाबाद 36 रनों के बावजूद 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन ही बना सकी। वहीं कल ही खेले गए दूसरे मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने केएल राहुल के नाबाद 84 रन की मदद से राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हराया। पंजाब ने जीत के लिए 153 रनों का लक्ष्य 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने जॉस बटलर के 51 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 152 रन बनाए। और अब समीक्षा। इतने अधिक प्रयोग के बाद भी किस उपयोग की भारतीय हॉकी।
भारत की टीम है बाएं तरफ जहां पे उद्घाटन है वहां पे पहुंच गया अब्बास। अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में। और यह खेल भारत को 1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है।
ये सुनने में किसी भी खेल प्रेमी को सुकून भरा एहसास हो सकता है कि भारतीय हॉकी टीम 8 बार की ओलंपिक और 1 बार की विश्व चैंपियन है। अब ये बात अलग है कि भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार साल 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साल 1975 में मलेशिया में वो विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद चैंपियन बनना तो दूर, भारतीय हॉकी टीम कभी इनके सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची। मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उसी टीम के कप्तान भास्करन की टीम से छुट्टी हुई। हालांकि बाद में वो एक समय टीम के कोच भी बने। तब से आज तक वही सिलसिला चला आ रहा है। कभी टीम के कप्तान को हटाया जाता है, कभी कोच को बदला जाता है। पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेलों में 4th स्थान पर रहने वाली भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के कोच को अब बदल दिया गया। महिला टीम के कोच हरिंदर सिंह अब पुरुष और पुरुष टीम के कोच शॉर्ट बारिन को महिला हॉकी टीम का कोच बना दिया गया है। अब भारत के सामने अगली चुनौती एशियाई खेल है। अगर वहां स्वर्ण पदक मिला तो टीम सीधे सीधे ओलंपिक्स में जगह बना लेगी। ऐसे में हॉकी इंडिया का ये कदम दोनों कोचों के लिए अग्नि परीक्षा जैसा मानते हैं। साल 1975 में फाइनल में अपने गोल से भारत को विश्व चैंपियन बनाने वाले अशोक कुमार सिंह,
हरिंदर सिंह का मेंस टीम में जुड़ना ये पहले भी जोड़े जा सकते थे। मरियन को एज इट इज रहने देना चाहिए था वुमेन्स टीम में, जो नहीं किया गया। ये कुछ गलतियां थी जो हुई हैं। बहरहाल गलतियां ही हमारा सबक होती है और अभी वक्त है हमारे पास में दोनों टीमों को संवारने का और आगे बढ़ाने का। मैं समझता हूँ दोनों कोच इस बात को बखूबी समझते होंगे कि उनके लिए करो या मरो की स्थिति है।
करो या मरो वाली हालत हॉकी के कोच की, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल खराब परिणाम के बाद ही वो बलि का बकरा बने हैं। कई बार तो कामयाबी के बाद भी उन्हें पुरस्कार की जगह तिरस्कार मिला है। साल 1998 में बैंकॉक में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने के बाद कप्तान धनराज पिल्ले और कोच एमके कौशिक की टीम से छुट्टी हुई, और उसके बाद साल 2014 में टीम को एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक दिलाने वाले कोच एमके कौशिक की एक बार फिर टीम से छुट्टी हुई। ऐसे दर्जनों उदाहरण से भारतीय हॉकी का इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन इतिहास के ही पन्नों में साल 1964 में टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे गुरबख्श सिंह भविष्य को ध्यान में रखकर सलाह देते हैं।
आज तो वीडियोग्राफी हो गया, हॉकी बहुत आगे चलेगी और इसके लिए बहुत जरूरी है कोच वो कंटिन्यू रहे। वो कम से कम आज से ये फैसला हो जाना चाहिए कि 2 साल के लिए हरिंदर को रखा जाएगा। आई विल बी हैप्पी व्हाटएवर रिजल्ट। लेकिन होता क्या है कि हम इसी तरह से चलते हैं, पहले ऑल्टमैन को निकाला गया।
वैसे हॉकी इंडिया ने राष्ट्रमंडल खेलों से पहले पूर्व कप्तान पी श्रीजेश को हटाकर मनप्रीत सिंह को कप्तान बनाया, और अब एक बार फिर पी श्रीजेश को मनप्रीत सिंह की जगह कप्तान बना दिया गया है। अब भला जिस टीम के कोच और कप्तान को ही ये पता ना हो कि उनके कंधों से कब जिम्मेदारी का भार उतर जाए या फिर कब रख दिया जाए, तो ऐसे हालात में अगले ओलंपिक्स जो जापान में होने हैं उसकी राह कैसे आसान हो। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत किम डेरोक ने कहा है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी उन उपायों की तलाश कर रहे हैं जिनसे अमेरिका को ईरान के साथ परमाणु समझौते को रद्द करने से रोका जा सके। पाकिस्तान के गृह मंत्री एहसान इकबाल पर जानलेवा हमला हुआ है। एक बंदूकधारी ने इकबाल पर उस समय गोली चलाई जब वह नरोवाल कस्बे में पार्टी की एक मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो लोगों की राय को गुमराह कर रहा है और प्योंगयांग के फैसले को किसी भी सूरत में उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया गुरप्रीत ने। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति।